नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है गुरु के ऊपर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला या फिर अंधकार को दूर करने वाला। अब अंधकार को दूर तो ये लाइट भी कर देती है, लेकिन ये अंतर के अंधकार की बात है जिसे गुरु ही दूर करते हैं। सभी धर्मों में गुरुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं, वो हमें धर्म और आध्यात्म से जोड़े रखते हैं, वो हमें संसार के भाव सागर से पार ले जाते हैं या फिर संसार में कैसे जीना है ये हमें सिखाते हैं। इसीलिए गुरुओं के लिए बहुत ज्यादा आस्था हर एक धर्म में देखा जाता है। लेकिन यदि हम जब सद्गुरु की बात करते हैं तो वो सद्गुरु वास्तव में गुरुओं के भी गुरु होंगे, क्योंकि जब सद्गुरु कहा जा रहा है तो वास्तव में जो सभी गुरुओं के ऊपर हों और वो संबंध परमपिता परमात्मा से है। कल हम चर्चा कर रहे थे शिक्षक के रूप में परमात्मा को हम कैसे याद करते हैं, किस प्रकार से वो हमें शिक्षा देते हैं। आज हम प्राता जी से जानेंगे कि कैसे हम परम सद्गुरु से नाता जोड़ें और किस प्रकार से उनसे संबंध जोड़ करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। आइए आज के समाधान में प्राता जी का अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक यू।
प्राता जी, जब सद्गुरु की बात आती है तो एक बात प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है कि बहुत सारे गुरु रहे हैं और उनमें से भी कई गुरुओं को हम सद्गुरु ही कहते हैं, लेकिन गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है और सद्गुरु तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए?
गुरु सचमुच वंदनीय ही हैं, क्योंकि वो मार्ग दिखाते हैं
जी।
पर मार्ग दिखाते दिखाते यदि वो इस बात पर आ जाए कि वो मंजिल में ही हूं तो यहां गड़बड़ हो गई। तो गुरु सचमुच बहुत महान हुए भारत में, तो चमत्कारी गुरु बहुत महान, जो अपने शिष्य भी ज्यादा नहीं बनाते थे, दो चार, क्योंकि उन्हें पता था कि शिष्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे उतने ही शिष्य बनाने हैं जितनों को मैं पार कर सकूं। धीरे धीरे परंपराएं जस डाउन हुई, जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो शिष्य परंपरा जोर पकड़ गई और उसमें धन का बाहुल्य हो गया, तो एक पतन की स्थिति आ गई। तो गुरु लोगों ने क्या शुरू किया कि मैं ही सब कुछ हूं, जिसका उन्हें मार्ग दिखाना था, जो परमपिता है उससे सबको वंचित कर दिया। ये मिसिंग पॉइंट है। तो जो परमपिता है आखिर उसे ही सद्गुरु बनकर इस धरा पर आना पड़ा कि नहीं, ये सब जो तुम्हारे मार्गदर्शक थे अब वो तुम्हें मार्ग दिखा भी नहीं रहे हैं, तुम्हें पथ विमुख कर रहे हैं, मेरे को मेरे द्वारा ही जानो। कौन सी तुम्हारी मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की, वो मेरे द्वारा जानो। तो भगवान स्वयं परम सद्गुरु बनकर हमारे पास आए, हमने उसको अपने सम्मुख पाया, उसने हमें महामंत्र दिया, सदगति का गति का मार्ग दिखाया, सत्य ज्ञान दिया। तो वास्तव में सद्गुरु, उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, जैसे आप कहा कि आजकल बहुत सारे गुरु भी अपने को सद्गुरु कहलाने लगे हैं, क्योंकि जिनके शिष्य ज्यादा हो गए वो अपने को सद्गुरु कहलाने लगे। लेकिन गुरु मनुष्य गुरु और सद्गुरु परमपिता गुरु, जिसके लिए आपने पहला ही श्लोक सुनाया, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है वही फाइनल गुरु है। इसलिए उसके लिए एक शब्द और जोड़ दें हम तो ये बात क्लियर हो जाए, परम सद्गुरु। अगर कोई यहाँ भी अपने को सद्गुरु कहे तो वो उन सब का भी गुरु परम है, यानी उन सब को भी गति सदगति देने वाला। देखिए, यहाँ सोचने की बात है कि अगर गुरु लोग सदगति का मार्ग जानते होते तो भगवान को सदगति का मार्ग दिखाने के लिए आना न पड़ता। यहाँ किसी की ग्लानी आदि की बात नहीं, लेकिन जो एक सद्विवेक है जिसके कारण थोड़ा अंधकार, जिसकी मिसिंग के कारण थोड़ा अंधकार संसार में हो गया ना, कि अनेक लोग गुरुओं के पीछे चले गए और हुआ क्या कि गुरुओं के पास कुछ सिद्धियां थी और उन्होंने भी फिर जब उनका नामाचार होने लगा तो उसे प्रभावित होकर अनेक तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की, उसमें कई गुरु बदनाम भी हुए ताकि उनका नाम हो, चमत्कार दिखा सके। पर एक सच्चे गुरु का लक्ष्य ये था कि वो लोगों को सुख दे सके, वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, जब विकट परिस्थिति किसी के पास आ जाए तो गुरु उससे उसको उबार सके, लक्ष्य ये था। और बहुत गुरु इसमें सफल हुए, इसलिए भारत में गुरु परंपरा चलती रही। गुरु पूर्णिमा और गुरु की वंदना का दिन ये सब होता रहा, ये सब अच्छी चीजें रही। भक्ति भावना संसार में बढ़ी रही, ऐसे महान पुरुषों का मान भी बढ़ा और महान पुरुष भी भारत में बहुत हुए, आज भी हैं।
भ्राता जी, विशेष करके जैसे आपने एक बात कही कि गुरुओं ने अपने आप को जैसे सद्गुरु घोषित कर दिया या मनवाना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्तों ने ही अपनी भावना के कारण या उनसे चूंकि प्राप्ति हुई तो उन्हें सद्गुरु का दर्जा दे दिया, परमात्मा का दर्जा दे दिया? शायद गुरुओं का ये भाव ना रहा हो कि लोग मुझे भगवान माने, जैसे जितने भी धर्म स्थापक है सबने ऊपर की ओर इशारा किया था, लेकिन सभी धर्म स्थापकों को ही परमात्मा मानने लगे, उन्हें ही पूजने लगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों ने भक्ति भावना के कारण गुरुओं को परमात्मा का दर्जा दे दिया और शायद हम उस सद्गुरु से विमुख हो गए?
वास्तव में अनेक भक्त लोग, अनेक मनुष्य, जब उनको अच्छी प्राप्तियां हो जाती हैं
जी,
जब उनकी कोई बड़ी समस्या हल हो जाती है, तो वो अपने गुरु को भगवान मानने लगते हैं। कुछ गुरु इतने महान भी हुए कि गुरु सूक्ष्म शरीर धारण करके अपने शिष्यों के पास भी पहुंच जाते रहे। साईं बाबा के लिए भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है, वेल नोन है। ऐसे अनेक महान गुरु इस धरा पर हुए हैं, आज भी कोई कोई हैं। तो शिष्यों ने उनको ही सर्वोपरि मान लिया, और क्योंकि उस मनुष्य की तत्कालीन समस्या वही थी, मान लो उसका बेटा कैंसर से अति पीड़ित था और मृत्यु सैया की ओर चल रहा था, गुरु ने उसको बचा दिया, तो वो व्यक्ति कहेगा यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम ही भगवान हो। कौन भगवान है वो किसने देखा, कौन उसको जाने, मेरे लिए तुम ही
भगवान।
तो एक तरह से बात ठीक भी रही, लेकिन भगवान का दर्जा कोई बहुत ही सुप्रीम है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। वो मरुओं को केवल जिंदा नहीं करता, वो तो सारी संसार को ही स्वर्ग बना देता है, वो तो जिंदे मनुष्यों में प्राण फूंकता है। ये नई लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, जो जिंदे होते भी मृत प्राय है उनको नया जीवन दे देता है। तो ये थोड़ी सी मिसिंग पॉइंट जो हो गई, वास्तव में अगर गुरु ये करते सभी, जैसे गुरु नानक देव ने किया या सिखों के बहुत सारे गुरुओं ने ये किया है, कि असली गुरु तुम्हारा ऊपर है। और देखिए, 10 गुरु होने के बाद गुरु परंपरा ही समाप्त कर दी कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही तुम्हारा गुरु होगा। तो गुरु यदि इतने महान हो कि वो परमात्मा से मिलन का सबको मार्ग दिखाएं, तो सचमुच वो वंदनीय और पूजनीय है। और ऐसे गुरु अब भी हैं, उनका नाम इतना ज्यादा नहीं होता, गुप्त रहते हैं, अपनी अच्छी तपस्या करते हैं, मनुष्यों को मदद करते हैं। लेकिन जहाँ गुरु लोग नाम मान के पीछे ज्यादा चले जाते हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी उनके जीवन से थोड़ी हट जाती है। तो हमारे सभी गुरुओं को भी इन चीजों से बचना चाहिए और अपने को महान तपस्वी बनाकर, महान योगी बनाकर, न केवल दो चार के लिए लेकिन सारे संसार के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए।
जी, वैसे भी उन्होंने अपना जीवन, भ्राता जी, संपूर्ण जीवन जो मानवता की सेवा के लिए ही अर्पित किया है या ईश्वर के लिए अर्पित किया है, लक्ष्य भी तो उनका यही होता होगा कि हम भी ईश्वर तक पहुंचें और जितने भी हमारे साधक बंधु हैं, भक्त हैं या फिर फॉलोअर्स हैं, वो भी ईश्वर तक पहुंचे, इसी शुभ भावना से वो भी कार्य करते होंगे। भ्राता जी, चूंकि हमारी चर्चा चल रही है विभिन्न संबंधों पे, तो बहुत सारे लोगों ने गुरु से रिलेटेड कि कैसे हम परम सदगुरु से अपना नाता जोड़ें या सदगुरु हैं क्या, उसे संबंधित अपने प्रश्न फोन कॉल के माध्यम से हम तक प्रेषित किए थे। उनमें से पहली बात यही थी भ्राता जी कि गुरु और सदगुरु को यदि हमें भिन्न भिन्न करना हो तो कैसे हम समझें कि गुरु ये करते हैं, सदगुरु ये करते
नहीं। बस छोटा सा डिफरेंस हम रखें, देहधारी सभी गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो विदेही है, जो निराकार है, जो सभी का सदगति दाता, वही परम सदगुरु है। और इस समय क्योंकि वो आकर ये कार्य कर रहा है, हमने परमपिता को तीनों रूपों में देखा है, परमपिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है आजकल कि वो स्वयं आकर सदगति का मार्ग दिखा रहे हैं, और न केवल मार्ग दिखा रहे हैं लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं, हम शिष्य शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके बच्चे भी हैं, उनको वो बहुत बल दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, ताकि वो माया पर विजय प्राप्त कर सके, ताकि वो मनोविकारों को बिल्कुल छोड़ सकें और उनमें इतनी ताकत आ जाए कि वो दूसरों को भी मदद कर सकें इस माया को जिताने में।
बिल्कुल, मतलब ये कहा जाता है जी, जैसे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि वो पतियों के पति हैं, या पिताओं के भी पिता हैं या शिक्षकों के भी शिक्षक हैं, वैसे ही वो गुरुओं के
भी गुरु।
बेटा जी, दूसरी बात किसी ने हमसे पूछा था कि आज भी कई मनुष्य गुरुओं को सदगुरु कहते हैं, शायद इसकी बात हमारी हो गई, तो इससे कैसे हम मतलब लोगों को रिलेट करें? खैर ये बात आपने कह दी है ब्रदर जी, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, कोई बात नहीं, अगर उनकी भावना है वो उन्हें सदगुरु कहते हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मान लो शंकराचार्य हैं, वो एक बड़े पद पर हैं, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के हेड हैं वो, और वो महान हैं तो लोग उन्हें अपना सदगुरु भी माने तो कोई हर्जा तो नहीं है।
जी,
बस ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने को सच्चा सदगुरु सिद्ध करें। सिद्ध माना वाचा से नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, ताकि उनके पास जो भी जाए वो प्रसन्न होकर लौटे। केवल भावना नहीं, केवल पैर छूकर नहीं, लेकिन परम आनंद से भरपूर होकर लौटे और परमात्मा से मिलन का मार्ग जानकर लौटे। बस हमारा कहना ये है, तो सदगुरु होना अच्छी बात है, लेकिन परम सदगुरु की ओर वो इशारा करें कि मुझे नहीं उसे याद करना। जैसे देखिए, हमारे यहाँ बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे ब्रह्मा बाबा का। वो स्वयं में बहुत महान थे, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और इतना त्याग किया कि बाद में त्याग का भी त्याग, मैंपन का भी त्याग, मैं बड़ा हूँ, पूज्य भाव का भी त्याग, जो श्रीमद् भगवद गीता में पूज्य भाव का अभाव हो जाए। तो बाबा ऐसे थे, किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते थे, हमेशा कि तुम्हारा नाता उससे है, परम सदगुरु से, मैं तो केवल मीडियम हूँ, मैं तो तुम्हें केवल उससे मिलाने का मार्ग दिखाने वाला हूँ, पर तुम्हारा नाता उससे ही है। हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर ज्वलंत प्रैक्टिकल उदाहरण रहा ब्रह्मा बाबा का। कोई बाबा को हाथ भी जोड़ते थे, कहते क्यों रोज हाथ जोड़ना होता है? कह मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, बाप बच्चों को, और बच्चे बाप को रोज रोज इस तरह का व्यवहार थोड़ा ही करते हैं। तो देखिए, एक बहुत स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने को इस फीलिंग से मुक्त कर चुका कि मैं कुछ हूँ, मैंपन का पूरी तरह अभाव कर दिया, मैंपन को समझो पूरी तरह से मिटा डाला और केवल एक तू ही तू हूँ। यही हमारे सभी जो गुरु हैं इस संसार, यदि वो इस चीज को फॉलो करें तो दे बिकम रियली वेरी ग्रेट एंड दे बिकम द ब्यूटी फॉर दिस वर्ल्ड।
बिल्कुल, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन का बड़ा ही सुंदर एग्जांपल आपने दे दिया कि वास्तव में कैसे हम परम सदगुरु तक पहुंचाएं। लेकिन एक बहुत जैसी बात आपने कही भ्राता जी कि वो पैर छूने नहीं दिया करते थे या प्रणाम करने नहीं दिया करते थे, लेकिन अपने बड़ों के लिए एक मन में भाव भी तो पैदा होता है कि हम उनका आशीर्वाद ले लें पैर छू करके, तो क्या ये करना ठीक नहीं है?
देखिए, बाबा का एक दूसरा भाव था। बाबा जब सभी से मिलते थे तो कहते थे तुम मेरे बच्चे तो हो पर तुम बहुत महान हो, तुम तो वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, अब तुमसे मैं चरण स्पर्श कैसे कराऊं? क्या महान आत्माओं से चरण स्पर्श कराया जाता है? ये उनकी दृष्टि थी, एक बहुत विशाल दृष्टि दूसरों के लिए कि तुम छोटे नहीं। जैसे भक्ति में मंदिरों में जाके कह दिया हे प्रभु मैं तो दास हूँ, मैं तो नीच कपटी पापी हूँ, ये नहीं, तुम महान हो, भगवान के बच्चे हो, तुम देवकुल की महान आत्मा हो, इस फीलिंग में रहो। तो बाबा न केवल स्वयं स्वमानधारी थे लेकिन दूसरों को भी बहुत स्वमान देते थे, इसलिए वो चरण स्पर्श करने को मना करते थे। दूसरी बात थी कि बाबा सभी को बहुत महान और योग्य बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे मैं तो महान बनूं बाकी सब छोटे रहें। उनकी इच्छा थी मेरे जैसे लाखों बन जाएं, बाप थे वो, तुम बाप समान बन जाओ। तो एक एक को महान बनाना चाहते थे, मांगने वाले नहीं कि बाबा ये दे दो। बाबा कहते थे नो, मांगना बिल्कुल नहीं, मांगने से मरना भला, तुम इतने महान बनो कि तुम दाता बन जाओ।
मतलब कि अब तक तो चलिए चरण छूते आए थे तो वो शायद उस ऊंचाई को हम नहीं महसूस कर पाते थे या वहां तक पहुंचना है वैसा नहीं सोच पाते थे, बाबा शायद इस चीज का आभास कराते थे। और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है कि तुम केवल नीचे ना रहो लेकिन ऊपर उठो, महान बनो।
मुझे याद आ गया, आप ये कह रहे हैं तो कई माताएं, माताओं को बड़ी भावना होती है, बाबा के चरण छूती थी, बाबा आप तो बड़े हो, ये हो, आप में से बाबा आते हैं, वाह क्या हो आप चरण छुए बिल्कुल। बाबा कहता था अरे तुम माताएं जगत माताएं हो, मेरी भी माता हो, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए मेरी नहीं। तो हम सब ये देख के सचमुच भाव विभोर हो जाते थे कि बाबा सबको सम्मान दे रहा है, स्वमान दे रहा है, महान बना रहा था और कभी अपने लिए नहीं, ऊपर, बुद्धि उससे लगाओ, बच्चे याद उसको करना है, योग अभ्यास उसके साथ करना है। मैं तो मीडियम हूँ, मेरे से योग लगाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाबा इतने कड़े शब्द बोल देते कभी, अगर तुम मुझे याद करोगे तो पाप हो जाएगा तुम्हारा। पाप तो ये नहीं होता अपने बड़ों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी महानता
जी,
अगर महान पुरुषों में हो तो सचमुच वो देश को महान बना दे।
आपने ब्रह्मा बाबा के साथ का प्रसंग सुनाया रहता जी, कई बार मैं दादियों को देखता हूँ या उनके प्रवचन सुनता हूँ तो उसमें भी लगातार वो केवल परमात्मा की ओर ही इंगित करती हैं कि नहीं परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। यद्यपि उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में बिताया है और वो सचमुच प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन फिर भी अपने लिए जरा भी अहम भाव नहीं, ऊपर की ओर इशारा। तो शायद ये एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल क्या, वो तो बहुत महान है, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। जिन्होंने अपने काम को, क्रोध को, अभिमान को जीत लिया हो, जिन्होंने सभी के लिए बहुत निर्मल भाव, कल्याण का भाव धारण कर लिया हो, जिनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बीता हो, जो बाल ब्रह्मचारिणी हो और जो सदा योग युक्त रहने का अभ्यास करती हो, जिन्होंने संसार की, मानवता की सेवा में अपनी हड्डियां हड्डियां घिसा दी हो, वो कितने महान होंगे। लेकिन कभी ये नहीं उनके मुख से सुना जाएगा, ना व्यवहार में देख सकते कि कोई उनके पैर छू रहा हो, कोई उनको मालाएं चढ़ा रहा हो। नो, एक सर्वशक्तिमान से तुम्हारा नाता है। जैसे हम महान बने उससे नाता जोड़कर, वैसे तुम भी महान बनो उससे नाता जोड़कर। यही हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत स्ट्रांग नींव है, फाउंडेशन है। तो हमारी दादियां, हमारे हेड्स स्पिरिचुअली बहुत ही सॉलिड हैं और उनके वाइब्रेशन संसार को सुख दे रहे हैं।
जी जी, तो परम सद्गुरु की ओर ही वास्तव में सबको इशारा करना चाहिए, ताकि बुद्धि योग और कहीं ना भटके, उस एक से जुड़ जाए। दाता जी, और एक हमारी बहन ने प्रश्न किया था कि कहते हैं कि सद्गुरु से ही सद्ज्ञान मिलता है, तो वो सद्ज्ञान क्या है जिससे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए?
बहुत ही अच्छी बात है। मैं इससे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। हम जब छोटे आए तो लोग ज्ञान सुनने आया करते थे, तो हमें कहते थे तुम्हें पता नहीं मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ। भले आज बदनाम भी हो गए वो अलग चीज है, लेकिन तब मैं क्या सोचा करता था कि देखो एक मनुष्य गुरु जो आज प्रसिद्ध है, विदेश से कोई आया, भाई मैं तो योगानंद का शिष्य हूँ, जिसकी ये महिमा थी, मैं तो बाबा थे गुरु जो सदैव 25 साल के ही दिखाई देते थे, वो 250 साल तक जिए, 25 साल जैसे दिखते थे, मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैंने उनके दर्शन भी किए। मैं सोचा करता था ये मनुष्य, मनुष्यों के गुरु और शिष्यों को इतना गर्व, अभिमान नहीं कहेंगे गर्व। हमारा परम सद्गुरु स्वयं भगवान जो सदगति देने आ गया, मार्ग दिखाने नहीं, देने आ गया, तो हमें भी नशा चढ़ता था, ईश्वरीय नशा। वाह, हम परम सद्गुरु के शिष्य हैं, उसके फॉलोअर हैं, भगवान के फॉलोअर हैं, जो हमें न केवल मार्ग दिखाता है लेकिन बल देता है, वरदान देता है, अपनी शक्तियां हमें प्रदान कर देता है, माया पर हमें विजयी बना देता है। तो हम भी नशे से कहने लगे हम परम सद्गुरु के शिष्य हैं, जो शिव बाबा है, जो सुप्रीम है, जो निराकार है। तो हमें ये नशा होना ही चाहिए कि हम किसके शिष्य हैं। तो जिसके हम शिष्य हैं वो तो हमें कितना प्यार करता है, वो तो ये भी नहीं कहता कि मेरे चरण छू लो, उसको चरण है ही नहीं, वो ये भी नहीं कहता मेरे आगे दंडवत कर दो, नहीं तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तुम मेरे महान बच्चे, महान हो, तुम्हें जग को महान बनाना है। तो हमें भी बहुत नशा चढ़ता था, तो वो आकर ज्ञान दे रहे हैं, सदगति का ज्ञान। महामंत्र उसने दिया ही है, मन मना भव। इस मंत्र का को देने का अर्थ ये नहीं कि इसको हम रटेंगे, लेकिन मन बुद्धि मेरे में लगाओ, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो मंत्र का अर्थ वैसे भी मंत्रणा होता है, राय। अभी लोग मंत्रों को ही जपते हैं, ठीक है उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन जो रियल मंत्रणा है, जो एडवाइस है परमात्मा की, मुझे याद करो, मेरे से मन बुद्धि लगाओ, मेरे स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करो, फिर तुम कर्म करो। पहली श्रीमत दी, इसको हम ज्ञान न कह के अब श्रीमत कहते हैं। ज्ञान तो दिया परम शिक्षक के रूप में उन्होंने, लेकिन हमें जो सदगति का मार्ग दिखाया वो श्री मत के रूप में, भगवान की मत, मनुष्यों की मत नहीं। तो उसमें पहली मत यही थी कि तुम आत्माएं हो, ये देह तुम्हें छोड़कर जाना है। जैसा ये देह तुम्हारे पास है, ऐसे अनेक देह रूपी वस्त्र तुमने धारण किए हैं, पहने हैं, उतारे हैं, तुम इससे डिटैच हो जाओ। ऐसा समझ लो ये तुम्हारा मकान है और तुम आत्माएं यहाँ इसमें विराजमान हो, तुम ये नहीं हो। पहले हमें सोल कॉन्शियस बनने की श्रीमद्दी सदगति का प्रथम कदम यही है। और फिर राह दिखाई कि तुम किस तरह आत्मा के जो गुण हैं सारे, अब उनमें स्थित हो जाओ। आत्मा श्याम स्वरूप है, परम पवित्र है, सुख स्वरूप है, अब इसको फील करो, केवल गाओ नहीं, तुम ये हो, इसमें स्थित हो जाओ। तो उसकी ओर हमारे कदम चले, प्योरिटी बढ़ने लगी, शांति बढ़ने लगी, और शांति इतनी बढ़ने लगी कि वो शांति साइलेंस पावर बन गई, शांति की शक्ति बन गई, जिससे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। मैं पहले भी सुनाता आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, महावाक्य में कहूंगा, वो मुझे बहुत प्रिय लगता था, बड़ा अट्रैक्ट करता था। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है वही संसार के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। तो मैं सोचता था क्यों वो चुपचाप बैठा है, वो समाधि में बैठा है और वो कल्याणकारी कुछ सोच ही नहीं रहा, सोच समाप्त कर दिया, वो कल्याणकारी क्यों हो गया संसार के लिए? जब ईश्वरीय ज्ञान मिला और जब शिव बाबा ने ये सदगति का मार्ग दिखाया तो पता चला कि जब हमने संकल्प हो जाते हैं तो हमसे पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है, जो सारे संसार में फैलती है, न जाने वो कितने बड़ी चेंजेज लाती है। तो परम सदगुरु ने हमें सदगति का मार्ग प्रथम ये दिखाया, सोल कॉन्शियस हो जाओ, बिल्कुल बिंदु बन जाओ, आत्मा भी बिंदु है और मन को भी बिंदु कर दो, जीरो, थॉटलेस कर दो, उसे निसंकल्प कर दो, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर दो, तो तुम फिर से देवत्व की ओर चलोगे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। पहली शिक्षा ये थी।
जी जी जी, मतलब यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है, उसके पश्चात तो जैसे कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि एक यात्रा है जिसमें परिवर्तन आता चलता है और हमारे अंदर देवत्व के जो भाव हैं, गुण हैं, वो जागृत होते चले जाते हैं। प्रताप जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि सद्गुरु कृपा करते हैं, ये हमेशा गुरु के लिए कहा जाता है कि वो कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, वरदान देते हैं, तो कैसे उनकी कृपा हमें मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या कृपा वो हमारे ऊपर करते हैं?
देखिए, संसार में जो कुछ होता है, लोग अपने गुरु के पास जाएंगे, फल फूल भेंट चढ़ाएंगे, कुछ और भी रखेंगे, धन आदि भी, उनके चरण छुएंगे, वो आशीर्वाद दे दें, उनका दया भाव बना रहे, ये तो हुआ सांसारिक बात। परमात्मा इससे हटकर है, वो केवल ये चाहता है तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो मेरी आज्ञाओं पर चलो, तो मेरे प्यार के, मेरी दुआओं के, मेरी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो हमने खुद देखा कि वो मनुष्य जिन्होंने ईश्वरीय श्रीमत को अपनाया, जिन्होंने अपने जीवन को स्वच्छ किया, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक भूल एक बार कर दी तो सदा के लिए उससे अपने को मुक्त कर लिया, एक श्रेष्ठता का मार्ग अपना लिया और सदा उस पर आगे बढ़ते गए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। गुरुओं के लिए ये भी है कि जो परम सदगुरु है उसके आगे हम परफेक्टली सरेंडर हो जाएं। तो जिनमें ये धारणाएं आ जाती हैं, उन पर परम सदगुरु की कृपा होने लगती है, यानी उनको बल मिलने लगता है, वो स्वयं उनकी केयर करने लगता है, वो स्वयं उनका ध्यान रखने लगता है। जैसे कई गुरुओं के चरित्रों में ये बात दिखाई ना, कि गुरु जैसे खुद अटेंशन में है कि मेरे शिष्य को कहीं कोई कष्ट न हो जाए, और अगर कष्ट हो रहा है और शिष्य ने गुरु को याद किया तो तुरंत उसको आभास हुआ मेरा शिष्य आपदा में है और तुरंत उसको मदद कर दी। तो हमारा जो परम सदगुरु है, ही इज ऑलमाइटी, इसलिए वो भी हमारी बहुत केयर करता है। जैसे ही हम उसको याद करेंगे, उसका आह्वान करेंगे, वो तुरंत आकर मदद कर देता, ये होती है उसकी कृपा।
तो ऐसी कृपा, जैसे हम सोचा करते थे कि हाँ जाओ तथास्तु और ये तुम्हारा हो जाए, तुमको धन मिल जाए, तुमको संपत्ति मिल जाए या बच्चे हो जाए, इस प्रकार की कृपा वो नहीं करते हैं।
वो परमात्मा है, विशाल अनलिमिटेड, ये मनुष्यों की कृपाएं हैं। उसकी कृपा तो है मुक्ति देने की, जीवन मुक्ति देने की, इस संसार से उद्धार कर देने की।
मान लीजिए मुझ पे कुछ बाधाएं आ गई हैं, अब कृपा रुकी हुई है, यदि सीधे शब्दों में कहूं तो क्या ऐसा कर जाऊं जो उसकी कृपा आने लगे और सारी बाधाएं हट जाएं?
योग युक्त होने का अगर हम अभ्यास करते हैं और उसका आह्वान करते हैं, जो योग की उसने भिन्न भिन्न विधियां बताई, तो ऑटोमेटिकली न केवल उसकी कृपा लेकिन उसकी शक्तियों के द्वारा बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाए।
और वरदान की भी बात तो हम हमेशा सुनते हैं वैद्य जी, कि वरदान भी गुरु देते हैं, तो क्या सदगुरु हमें वरदान भी नहीं देते?
बहुत ज्यादा वरदान मिलते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे
जी।
वरदान एक सुंदर विषय है जो हमें परम सदगुरु से मिलता है। अब तो हम उससे अपना नाता जोड़ें और पहले उसके प्यार के पात्र बन जाएं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, उस परम सदगुरु के बारे में हमें इतना कुछ बताने के लिए। अच्छा लग रहा है उनके बारे में जानकर, और लगता है कि अब यदि उनकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे, उनकी कृपा हम पे आनी शुरू हो जाएगी। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार को दूर करने वाला है, और वैसे भी हमारी माता जी भी गाया करती थी कि गुरुदेव मुझे अपनी चरणों में जगह दो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं, कि सिवाय आपके मेरा और कोई है ही नहीं। ऐसा एक समर्पण भाव गुरु के लिए रखा करते थे हम भक्ति मार्ग में भी। यदि परमात्मा के लिए भी यही समर्पण भाव हम रखें और उनकी आज्ञाओं पर चलने लगें, तो निश्चित रूप से कृपा बरसने लगेगी, आशीर्वाद होगा, और हम अपने जीवन में उस बुलंदी तक पहुंच पाएंगे जिस बुलंदी पर हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जहां परमात्मा परम सद्गुरु का आशीष हो, वहां कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकेगी, जीवन में सफलता आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो परम सद्गुरु के साथ और नजदीक का संबंध कैसे बने, इस विषय को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।